Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Pani Panam Asti Asya Iti Pani Dhanam Asti Asya Iti Dhani Panam Asti Asya Iti Pani. जिसके पास फण है उसको क्या बोलते हैं? फणी. जिसके पास धन है उसको धनी, जिसके पास गुण है उसको गुणी. इसी तरह फणी, फण वाले को फणी. समस्त फणिनाम नेत्रा, जितने भी सर्प हैं उन सर्पों का राजा नेता. नेता शब्द से नेत्रा बना, नेत्र शब्द से नेता बने हैं, लीडर, नेता, सर्पराज, इसका अर्थ हो गया सर्पों का राजा, सर्पराज. भगवान शिव के ये कलापी हैं, समस्त सर्प भगवान शिव के आभूषण हैं, यानी सर्पों का राजा शिव जी के आभूषण. कलापी माने गहना, आभूषण. और मयूर के जो पंख हैं वो भी नेत्रों की तरह हैं पंखों में. तो कलापी अर्थात तो उस मयूर के पंख में जो नेत्र की, नयन की जो आकृति है, आंखों की जो आकृति है, वह उस नीलकंठ के कलापी है. और इस नीलकंठ के कलापी सर्पराज हैं. नता अनुग्राही या नियुक्ति है, भगवान शिव के प्रति नमन करने वालों के प्रति शिव अनुग्रह करते हैं, इसलिए नता अनुग्राही. और यहां नीलकंठ माने मयूर किसके ऊपर अनुग्रह करता है? तो मयूरी के प्रति अनुग्रह करता है. प्रणवोपदेश निनदही, मयूर तो आवाज करता है, जोर जोर से आवाज करता है, मयूरी को पुकारता है, मयूरी को देखकर वह आवाज करता है. तो भगवान शिव किसको पुकारते हैं, कैसे आवाज करते हैं? प्रणवोपदेश निनदही, नित्य निरंतर प्रणव का उच्चारण करते हैं. सृष्टि में सबसे पहले प्रणव का उच्चारण भगवान शिव के ही मुख से हुआ है. सबसे पहले प्रणव का उच्चारण हुआ, प्रणव से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, चारों वेद उत्पन्न हुए, क्रम से उत्पन्न हुए, लेकिन सबसे पहले प्रणव उत्पन्न हुआ. प्रणव का उच्चारण किससे हुआ? तो शिव के मुख से. ये पुराणों में इस सब की चर्चा है. प्रणवोपदेश निनदही, के कीति योगी अते. मान लो वो जो नीलकंठ है मयूर, वो भी तो प्रणव का उच्चारण करता, कैसे? क्या 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 के की इति गीयते. इसीलिए भगवान शिव भी ओम का उच्चारण करते हैं, इसलिए मयूर के साथ समानता है. मयूर के भी गले में नीला है, शिवजी के गले में नीला कंठ है, इसलिए मयूर भी नीलकंठ है, शिव भी नीलकंठ है. मयूर के भी सिर में कलापी है, सिखी है, यानी कलगी है और शिव जी के भी सिर के ऊपर जटा और जटा के ऊपर आकाश है, वही उनकी कलगी है। मयूर भी मयूरी के प्रति बहुत अनुग्रह करता है और भगवान शिव भी नती नता उनको नमस्कार करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति वो तुरंत अनुग्रह करते हैं। ये सब समानता है। आकाशे न सिखी समस्त फणिनाम नेत्र कलापी नता नुग्राही प्रणवोपदेश निनदई के कीति योगीयते श्यामां शैल समुद्भवां घन रुचिम। ये पक्षी मयूर भी पर्वतों के चोटियों में जब काले काले बादल मंडराने लगते हैं तो तलेटी में बैठा हुआ मयूर उन बादलों को देखकर बड़ा आनंदित होता है। श्यामाम, श्याम माने काले काले काले, शैल समुद्भवाम पर्वतों के चोटी में मडराते हुए बादलों को देखकर। बादलों का नियम है कि पर्वत और जंगलों में वो प्रकट होते हैं और विशेष करके जंगल और पहाड़ जहां मिले बादलों को तो वहां घूमते ही रहते हैं, बारह महीने घूमते हैं वहां, पहाड़ को नहीं छोड़ते बादल, जंगलों को नहीं छोड़ते बादल। हाँ, इसी तरह मयूर तलेटी में रहता है और पर्वत के चोटियों में जब काले काले बादल मंडराने लगते हैं। दृष्ट्वा नतन्तं मुदा, उन बादलों को देखकर मयूर नाचने आरंभ कर देता है। पक्षी रूपी मयूर तो बादलों को देखकर नाचेगा और शिव किसको देखकर नाचेंगे। शैल समुद्भवाम श्यामाम, पर्वत की पुत्री, शैल माने पर्वत है, शैल माने पर्वत, और पर्वत की पुत्री कौन है? शैल भवाम, पर्वत से उत्पन्न होने वाली, शैल से उत्पन्न होने वाली शैल भवाम, और श्यामाम, श्यामा माने वो कृष्ण की श्यामा नहीं समझ लेना, श्यामा सबकी है, तुम लोग खाली कृष्ण की ही श्यामा होगी ऐसा नहीं समझना, पार्वती भी श्यामा है। और सही रूप में जब पार्वती पर्वत की पुत्री बनकर जब पैदा हुई थी, पुराणों में उल्लेख है, सही रूप में तो वो काली थी पार्वती, हां काली थी, बिल्कुल ब्लैक स्किन, काली थी, मैं जैसे ही है एकदम काली थी, तो उसी लिए उसका नाम श्यामा रख दिया था। अब उन्होंने पार्वती ने, पर्वत पुत्री पार्वती, शैल समुद्र भवाम श्यामाम, पर्वत पुत्री पार्वती ने ये संकल्प कर लिया था कि उनको जाति स्मरण था, पहले जन्म में मेरे पति शिव ही थे, सती के अवस्था में तो शिव ही उनके पति थे, और उनको जाति स्मरण है कि वही सती में अब पार्वती हुई हूं, पूर्व जन्म का स्मृति थी उनको, हम भूल गए हैं लेकिन उनको तो स्मरण था। तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी बचपन में, मेरा पति होगा तो शिव ही, मैं शादी करूंगी तो शिव से ही शादी करूंगी, और दूसरों से नहीं, क्योंकि असली पति मेरा तो वही है। सबने समझाया, अरे तू साधारण जीव है, वो तो साक्षात परमात्मा है, तुम्हारे कैसे पति हो सकते हैं। पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या करके भी उनको पति के रूप में प्राप्त करूंगी, वह मुझे यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, इसके लिए मैं तपस्या करती हूं। जंगल में जाकर घोर तपस्या आरंभ किया पार्वती ने, यानी काली माई ने, श्यामा ने, शैल समुद्भवा, शैल पुत्री श्यामा ने तपस्या आरंभ किया। एक दिन घूमते घूमते भगवान शिव वहां पहुंच गए, पुराणों की कथा है वो। शिव जी तो बहुत गोरे थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत गोरे थे। क्यों तपस्या कर रही हो, इतना कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? बोले मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। आप कौन हो? जिसको तुम पाना चाहती हो वही मैं हूं, मैं ही शिव हूं। तो हो गया मेरा तपस्या सफल, पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैचिंग नहीं हो रहा है देवी। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। तुम ब्लैक और मैं व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट हो, ये काम नहीं बना महाराज। मैं कहां गोरा इतना सुंदर और कहां तुम काली, और तुम मेरे जीवन में इसी रूप में यदि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा तो चंद्रमा में दाग की तरह मेरे जीवन में तुम दिखती रहोगी। यदि तुम मेरे जैसे गोरी बनती हो तब तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान शिव इतना कह के चले गए। अब पार्वती तो रोने लग गई, बड़ा दुखी हो गई, हाय अब मैं क्या करूं। तब पार्वती ने शिव जी के उस गौर वर्ण का नित्य ध्यान किया। नित्य उसी का ध्यान करते 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 पार्वती का पूरा काला शरीर गोरा हो गया। कोई पाउडर लगाना नहीं पड़ा, फेयर एंड लवली लगानी नहीं पड़ी उनको, है तपस्या भी अंदर से साधना की उन्होंने, ध्यान किया। कि ध्यान की ये विशेषता है, ध्यान करने वाला जिस ध्येय के चिंतन करता है, ध्यान करते करते ध्येय रूप हो जाता है, तब उसकी ध्यान सफल होता है। इसलिए पार्वती जो काली थी, शिवजी ने जब इतना कहा कि तू गोरी होगी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो पार्वती ने भगवान शिव के गौर वर्ण का ही सतत ध्यान करते करते अपने काले शरीर को भी गोरा बना लिया। तब उनका नाम गौरी हुआ। ये तो उनकी तपस्या से उनका नाम गौरी पड़ा है, गौर वर्ण से जो हुई है उसलिए उनका नाम गौरी। बहुत दिनों के बाद भगवान शिव घूमते घूमते फिर वहां पहुंचे। एक लड़की मेरे लिए मर रही है, उसको मैंने ये कंडीशन रखा था, ये शर्त रखी थी, चाहती तो मुझे है, और मैंने उसको कहा था तू गोरी होगी तो शादी करूंगा, जरा देखें तो सही गोरी हुई कि नहीं। घूमते हुए आए तो वास्तव में गोरी हुई है, और उनको स्वयं को पता नहीं कि मैं गोरी हुई हूं। वो तो क्योंकि शिव जी के ध्यान में मस्त थी। शिव वहां पहुंचे तब शिव ने सबसे पहले संबोधन किया, हे गौरी आंख खोलो, जिसको तुम चाहती हो मैं उपस्थित हूं। तो भगवान शिव ने जब देखा तो पार्वती को गौरी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पार्वती गौरी होने से पहले ये अवस्था है, श्यामाम शैल समुद्भवाम घनरुचिम, जैसे मयूर काले काले पहाड़ के चोटियों में मडराने वाले काले काले बादलों को घनरुचिम उसको देखकर दृष्ट्वा नटंतम मुदा प्रसन्न होकर वह नाचने लगता है, इसी तरह है शिवा। वो भी नीलकंठ, आप भी नीलकंठ, आप भी शैल समुद्भवाम श्यामाम पार्वती को देखकर प्रसन्न होते हो और नटंतम आप भी नाचने लगते हो, मुदा नटंतम प्रसन्न होकर नाचते हो। जैसे नीलकंठ यानी मयूर जंगलों में घूमता है यानी बाग बगीचों में घूमता है, जंगल अलग चीज है बाग बगीचे अलग चीज है, वो जंगलों में तो अनावश्यक घास भी पैदा हो सकते हैं, बाग बगीचे का तो माली उसका संरक्षण करता रहता है, देखभाल करता है, इसलिए अच्छे अच्छे फलदार ही वृक्ष ही बगीचे में रहते हैं। और मयूर जंगलों की अपेक्षा बगीचों में घूमना पसंद करता है, कारण कि जो उसके लंबे लंबे जो पंख हैं बगीचों जंगलों में वह कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, उसके लिए चलना कठिन होता है। और बगीचों में जंगल नहीं रहता, झाड़ पतंग नहीं रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, इसलिए वहां बड़े आराम से घूम सकता है वो। भगवान शिव भी जंगल ज्यादा मन पसंद नहीं पड़ कराते हैं, उनको जंगल ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बगीचा ही उनको पसंद है। फलदार बगीचा, कौन से बगीचे? वेदांतोपबने, वेदांत रूपी उपवन यानी बगीचे में भगवान शिव रूपी मयूर घूमते रहते, घूमते रहते। वेदांत के हर वाक्यों पर शिव तत्व प्रत्यक्ष दिखता है, वेदांतियों को ही यह अनुभव होता है कि हर श्रुति हर वाक्यों पर अन्यथा सभी शास्त्र में भगवान शिव विचरण नहीं करते। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शास्त्र को घोर जंगल कहा है, घोर जंगल कहा है। मन यदि तुम शास्त्र रूपी जंगल में भटक जाएगा तो तुम निकल ही नहीं पाओगे, इसलिए केवल वेदांत में मन को लगाओ। सभी शास्त्र को पढ़ूंगा, किस शास्त्र ने क्या कहा, किस शास्त्रों ने क्या कहा, किस शास्त्रों ने कहा क्या कहा, तो यह शब्द जालम महारण्यम, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने ये वाक्य कहा है। शब्द जालम महारण्यम, बड़ा जंगल है, भयंकर जंगल है शब्द। और तुम कहोगे मैं सभी शास्त्रों को पढ़ लूंगा, तो पढ़ तो लोगे लेकिन तुम्हारा चित्त भ्रमण कारणम, भटक जाओगे, तुम निष्कर्ष में नहीं निकल पाते हो। इसलिए हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमने बहुत से किताब पढ़ ली है, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। बोले ये सब पढ़ लिया? बोले हां। अब कोई पढ़ना बाकी है तो बताइए दो चार पुस्तक। फिर भी पूछते हैं हमसे, बोले गीता पढ़ ली? बोले वो भी पढ़ ली। भागवत पढ़ ली? पढ़ ली। रामायण पढ़ लिया? पढ़ लिया। तो आजकल महाभारत पढ़ रहे हो ना, तो वो भी पढ़ लो है? वो भी पढ़ रहे। अब क्या पढ़ोगे उसके बाद? बोल रही थी रामायण पढ़ूंगी, उसके बाद अब रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ोगे? उसके बाद फिर क्या पढ़ोगे? इसके बाद पढ़ते रहो, जब तक न मरो पढ़ते रहो। शब्द जालम महारण्यम, निकला क्या? जंगलों में भटको। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वेदांतों भी उपवन में घूमो, बस वेदांतों भी जंगल में घूमोगे, बगीचे में घूमोगे। उपवन माने बगीचा, वन नहीं है, अरण्य नहीं है, उपवन है। तुम्हें शीतलता भी मिलेगी, फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी, फूल मिलेगा, सुगंधित मिलेगा, धर्म अर्थ काम भोग सब वो सब वहीं मिल जाएगा। वेदांतोपवने विहार रसिकम, जैसे मयूर नीलकंठ जंगल की अपेक्षा बगीचे में घूमना उसको ज्यादा रुचिकर है, इसी तरह है शिवा आप सभी अन्य शास्त्रों की अपेक्षा शब्दारण्य, शब्द जाल महारण्य, वहां घूमने की अपेक्षा विशेष करके वेदांत रूपी उपवन में आप विचरण करना पसंद करते हो, और इसीलिए आप वेदांतो उपवने विहार रसिकम तम नीलकंठम भजे, ऐसे जो नीलकंठ हैं उनका मैं भजन करता हूं, बस सेवायाम, उनकी सेवन करता हूं, भजन करता हूं, स्मरण करता हूं। मयूर के बारे में कहते हैं, मयूरी को देखकर वो नाचता है तो भी और समय नहीं नाचता, फिर जिस समय बादल हो तब नाचता है। आकाश में बादल हो और इधर मयूरी सामने हो तब वो नाचेगा, बादल हो मयूरी ना हो तो नहीं नाचे, मयूरी हो बादल ना हो तो ना नाचे, है दोनों होना चाहिए तभी वो नाचता है। और मयूर के बारे में एक कहावत है कि नाचेगा तभी मयूरी को गर्भाधान का अवसर मिलेगा, मयूर नाचेगा तभी, क्योंकि उसके लंबे लंबे पूंछ आदि हैं, उसके कारण से गर्भाधान में बहुत व्यवधान होता है, अन्य पक्षियों की तरह उनका गर्भाधान नहीं होता। मयूर के बारे में कहावत है, वो जब बादल होते हैं आकाश में मेघ गर्जना करते हैं तो उसको लगता है कि भाई भगवान विष्णु ताली बजा रहे हैं, अब मुझे नाचना है, है? तम नीलकंठम भजे, आगे उसकी बात स्मरण कर रहे हैं शंकराचार्य जी, ताली बजा रहे हैं तो हमको तो नाचना ही पड़ेगा, तो मयूर नाचने लगता है। नाचते नाचते उसके शरीर से वह तेज स्खलित होता है, मयूरी उसको देखती रहती है कब स्खलित हो। एक कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से उसकी व्याख्या की है, यत्नादपि न पश्यति सिखी नाम आहार निर्गम स्थानम। कोई व्यक्ति बहुत कोशिश कर लेवे तो भी सिखी नाम माने मयूर के आहार निर्गम स्थानम है ने, और सामान्य शब्द का अर्थ हो गया आहार निर्गम स्थानम, समझ गए आप? आहार निर्गम स्थानम मलद्वार या मूत्र द्वार, समझे कि नहीं? यत्नादपि हजार कोशिश करने पर भी वह कोई चाहे देखना नहीं देख पाते, इतना छुपे रहता है, इतना उसको गुप्त रखता है वो, लेकिन वही मलद्वार आहार निर्गम स्थान और समय मयूरी को भी देखने को नहीं मिलता है, कहते हैं हाँ, कवियों ने तो यहां तक कहा है मयूरी को भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब वो नाचता है मयूरी के प्रसन्न करने के लिए बादलों के गर्जना के साथ ताल में ताल मिलाकर जब मयूर ठुमक ठुमक नाचने लगता है तो आपने जो लंबे लंबे जो पूंछ के पंख हैं उन सबको ऐसा खड़ा करके नाचता है कि आपने आप सब दिखा देता है, सब दिखा देता है। इसी तरह भगवान शिव नीलकंठ भी अपना जो गुह्य स्थान है जहां नित्य निवास करते हैं है? भगवान शिव भी छुपे रहते अपना नित्य निवास स्थान सबके सामने प्रकट नहीं करते, अपना स्वरूप सबके सामने प्रकट नहीं करते, लेकिन भगवान जब स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, भक्तों की भक्ति साधना, वेदांतियों की ज्ञान साधना, वेदांतियों के जो ब्रह्म चिंतन की निधिध्यासन की प्रक्रिया, तो उससे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो गह्वरा हृदय रूपी गुफा जहां वो छुप कर बैठे हुए होते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे मयूर प्रसन्न होता है तो अपना आहार निर्गम स्थान को वह स्वयं प्रकट करके दिखा देता है नाचते नाचते, और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं तो उसके हृदय में छुपे हुए होते हैं और प्रकट कर देते हैं अपने आप को। कवियों ने इस तरह से व्याख्या की है। उसी बात को और दूसरे ढंग से भी शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं 54वां श्लोक द्वारा। संध्या घर्म दिनात्ययो हरिकरा घात प्रभूतानक ध्वानो बारिद गर्जितम दिविशदाम दृष्टिच्छटा चंचला भक्तानां परितोष बाष्प विततिर वृष्टिर्मयूरी शिवा యస్మిన్నుజ్వల తాండవం విజయతే తం నీలకంఠం భజే. ये दूसरा श्लोक भी मयूर से ही उपमित करके स्तुति किया जा रहा है. मयूर प्राय करके सायंकाल संध्या के समय में नाचता है, दिन में नहीं नाचता, प्रातः नहीं नाचता. सायं का समय हो, आकाश में बादल हो, मेघ का गर्जना हो और बिजली चमक रही हो और उसी समय में मयूरी सामने आई हुई हो, तो ये सब वातावरण बने तब जाकर मयूर नाचता है. प्रातःकाल नहीं नाचता है वो ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में भी नहीं नाचता है, सायंकाल नाचता है. स्वाभाविक ही है. शंकराचार्य जी इस रहस्य को जानते हैं, मयूर के रहस्य को. इसीलिए वो मयूर रूपी नीलकंठ संध्या घर्म दिनात्ययो. घर्म माने गर्मी, दिन भर का जो गर्मी है, गर्मी से भरा हुआ जो दिन है वो दिन का अत्यय. अत्यय माने जाने पर, अत्यय माने निकल जाने पर, दिन के निकल जाने पर. और उधर रात्रि नहीं आ रही है, दिन निकल गया, गर्मी निकल गई, अंधकार नहीं आया है. उस संधि के समय में संध्यायाम संधि काल में यदि मेघ गर्जना हो, बिजली चमक रही हो, घने घने बादल छाए रहे हो, तो शाम के समय में मयूर नृत्य करता है. और दूसरे नीलकंठ, ये तो पक्षी नीलकंठ है, उसका एक नियम है. और शिव जो नीलकंठ हैं, उनके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी. संध्याया घर्म दिनात्तये संध्यायाम, संधि काल संध्या के समय यानी प्रदोष काल हमने कल चर्चा की थी.